मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, AFEIS के आज 1 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। एक छोटी सी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आपको YouTube पर एक प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, एक लेक्चर सुनने को मिलेगा जो ध्रुव राठी का है, भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर। अब जब भारत नेपाल सीमा और ध्रुव राठी के नाम से डालेंगे तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाने लगेगा। मेरा सजेशन है कि यदि आपके लिए संभव हो सके तो आप इसे जरूर सुने। ये करीब 10-15 मिनट का ही ध्रुव राठी का होता है और इससे आपको भारत और नेपाल के बीच अभी जो सीमा का विवाद चल रहा है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि इस पर डेली ऑडियो लेक्चर में विस्तार से बातें की जा चुकी हैं, लेकिन वहां विजुअल्स वगैरह के माध्यम से जब आप समझेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको और अधिक लाभ होगा। और चूंकि यह मामला अभी थोड़ा सा बढ़ता ही चला जाना है, क्योंकि आपने देखा कि नेपाल की संसद तक में जो वो अपने नक्शे में बदलाव कर रहे हैं, इससे संबंधित विधेयक पेश कर दिया गया है, तो मामला बढ़ता चला जा रहा है, जटिल होता चला जा रहा है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस टॉपिक को आप महत्वपूर्ण मानते हुए आपको चाहिए कि बेहतर तरीके से इसे तैयार कर लें और थोड़ा सा व्यापक रूप में भारत नेपाल संबंध को संपूर्णता में अब देखे जाने की जरूरत है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की तैयारी के बारे में कुछ खास बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक अच्छी खबर है, लगातार आप कोविड-19 से संपर्क में हैं और अखबारों में और न्यूज में उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी जो एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वह यह कि स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए, हो सकता है हम कोरोना को न रोक पाए, हो सकता है कि वायरस और ज्यादा बढ़े या जो कुछ भी स्थितियां होंगी, लेकिन यदि हमने इसका वैक्सीन इजाद कर लिया या इसकी बीमारी को हम ठीक करने लगे तो स्वाभाविक है कि फिर इसका जो आतंक है, इसका जो दबाव है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, वो कम हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा संकट इसके साथ क्या है, दो ही संकट है। एक तो यह बहुत तेजी से संक्रामक होकर फैलता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा यह कि अभी एक्सक्लूसिव इसके लिए कोई इलाज नहीं है। यही दो तो सबसे बड़े संकट हैं। तो अगर स्वस्थ हो रहे हैं, जो अब बढ़ करके लगभग 47.6% हो गया कह लीजिए, जो काफी है, ठीक ठाक हम पहुंच रहे हैं, आगे हम और भी लगातार इसमें सफलता हासिल करते जा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि ठीक है भाई, कोरोना हो गया ना, कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव वैक्सीन भी लगातार आने की बात हो रही है। भारत में ही 30 संस्थाएं जुटी हुई हैं इसके लिए वैक्सीन निकालने में, बनाने में। अमेरिका में तो लगभग ये स्थिति हो गई है, घोषणा की गई है कि इसके ट्रायल सफल हो रहे हैं। चाइना की भी एक कंपनी का ट्रायल सफल हो गया है। तो अगर 2-3 महीने में भी वैक्सीन आ जाता है तो मान करके चलिए कि कोरोना का जो इतना आतंक फैला हुआ है विश्व के ऊपर, उसे नियंत्रण करने में काफी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आप सबसे कोरोना के बारे में जो ये बातें करता हूं, इनफैक्ट उसका पर्पस सिर्फ यह होता है कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो आशावादी बना रहे, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं। और याद रखिए कि आप ही की तरह वे भी कभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, जो अभी फील्ड में जाकर कोरोना की लड़ाई का मुकाबला कर रहे हैं, है ना, वो सिविल सर्वेंट्स हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह आपने न्यूज में सुनी होगी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस बार का जो विषय रखा गया है वह है जैव विविधता, जैव विविधता। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जैव विविधता आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण के अंतर्गत। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी 2 तरीके से होती है, जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। एक तो आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं, तो ठीक है, जैव विविधता सिलेबस में है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन दूसरी, आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जो चूंकि इस बार के पर्यावरण दिवस पर साल भर के लिए जो विषय रखा गया है जैव विविधता रखा गया है मुख्य विषय, तो सीधी सी बात है कि उस पूरे के पूरे पर्यावरण में जितने भी टॉपिक है उनमें से जैव विविधता एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी इस तरह से 2 समानांतर दिशा में की जाती है। अखबारों में आज आपने एक नाम पढ़ा होगा, स्पेस एक्स। जैसे ही मैं स्पेस एक्स कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों, ये जो स्पेस एक्स है, ये एक कंपनी है, राइट? एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा। एलन मस्क अभी के समय के बहुत बड़े उद्योगपति और वैज्ञानिक और इनोवेटर माने जाते हैं। आप गूगल पे जाके देखिए एलन मस्क को, और यूट्यूब पर इनके बारे में कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, आपको जानना चाहिए एलन मस्क कौन है। इन्होंने एक यान तैयार किया है, वो है ड्रैगन यान, उसका नाम है ड्रैगन यान। और अभी यह खबर में इसलिए आया है कि इस ड्रैगन यान से जो नासा है, अमेरिका के जो अंतरिक्ष अनुसंधान वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नासा, उसके दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचा दिया है। यह पहली बार हुआ है, जिसको लेकर के एलन मस्क थ्रिल्ड हैं, रोमांचित हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी रोमांचित हैं। और इसको उन्होंने ऐतिहासिक दिन कहा है कि इस तरीके से अभियान के द्वारा अंतरिक्ष केंद्र में लोगों को पहुंचाया जा सकता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए, स्पेस एक्स जो कंपनी का नाम है और जिस यान से भेजा गया है वो ड्रैगन उसका नाम है। दोस्तों, एक खबर आप लोगों ने और अखबारों में पढ़ी होगी, G7 की बैठक को लेकर, है ना। जी का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन की अभी बैठक होनी थी, जून में होनी थी, लेकिन बहुत से देशों ने आने उस सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। कारण बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो कोरोना का संकट है तो स्वाभाविक है कि लोग ट्रैवल करने से बचेंगे। तो अब जो घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, वो ये है कि इस बैठक में अब उन्होंने G7 तो है ही है, चार अन्य देशों को आमंत्रित किया है। इसमें एक है रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये तीन तो हैं, तो सात पहले थे, ये तीन और हो गए, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, जिनको आमंत्रित किया गया है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि उन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया है। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि ये जो G7 है, इसकी जगह पर अब G11 बनाना चाहिए। तो सात तो ऑलरेडी इसमें है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सात कौन है, ये ध्यान से सुन लीजिए। अमेरिका, कनाडा, ये देखिए ये बिल्कुल एक ही महाद्वीप में है, अमेरिका के ऊपर कनाडा है, बेहतर होगा कि आप एटलस में इन्हें लोकेट करें। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। अब ये देखिए कि ये जो चारों के चारों हैं यूरोप के देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और एक देश जापान। तो ये सात देश इसमें पहले से हैं, चार को आमंत्रित किया गया है और ये कहा गया है कि अब इसे G11 बनाना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये जो G7 है, ये कोई ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो इन चार देशों को आमंत्रित किया गया है, भारत ने अभी इसका जवाब नहीं दिया है, देखते हैं कि भारत क्या जवाब देता है। लेकिन यह इस स्थिति को दिखाता है कि भारत की जो इमेज है विश्व मंच पर, वो लगातार मजबूत होती चली जा रही है। और जो कुछ राजनयिक हैं, ये मान रहे हैं कि खासकर G11 बनाने की जो बात कही गई है वो चीन का मुकाबला करने के लिए भी है। तो छोटे छोटे गठबंधन आप देखिए किस तरह के राष्ट्रों के बनने लगे हैं। दोस्तों, यहां जो G7 है और जो G8 है, उसके बारे में आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये कि बेसिकली ये जो G7 है, शुरू में G8 ही था, ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम था, 1975 में बना था। लेकिन हुआ ये कि बाद में जो रूस उससे विड्रा कर गया, 2014 में रूस उससे वापस हो गया, और खासकर 2014 के आसपास रूस ने क्रीमिया पर जो अटैक किया था, तो उसको लेकर के फिर ये सब देश नाराज हुए थे, तो रूस वहां से विड्रा कर गया, तो बाद में फिर ये G7 रह गया। तो G8 और G7 को आप बहुत अलग अलग मान करके मत चलिएगा। इसी के पैरेलल एक और है G20 बेसिकली वो जो इंटरनेशनल फोरम है, इसमें दो लोग होते हैं, एक तो गवर्नमेंट होती है और दूसरा जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके गवर्नर भी होते हैं। तो ये G20 है। तो G7, G8 और G20, बेहतर होगा कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लें, क्योंकि G7 में भारत को आमंत्रित किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की तैयारी। मैंने इन दो विषयों को जानबूझ करके अलग से चुना है, जानबूझ कर। दोस्तों, उसके पीछे रीजन है, मेरे पास डेली मैं समझता हूं कि कम से कम 10 मेल तो इस तथ्य के आते ही आते हैं कि सर आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, इस तरह के मेरे पास आते हैं। मेरे लिए बहुत संकट हो जाता है कि मैं क्या जवाब दूं, कैसे गाइड करूं, कैसे हेल्प करूं, क्योंकि उसमें यह नहीं लिखा रहता है कि आप इस बारे में मदद कर दीजिए, इस बारे में हेल्प कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, इस तथ्य को आप सबको स्वीकार करना चाहिए कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण प्रिपरेशन है, ये सामान्य प्रिपरेशन नहीं है। और अगर सामान्य प्रिपरेशन होती तो सीधी सी बात है कि फिर इसकी कोई इतनी बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए थी, इसको इतना कठिन परीक्षा माना भी नहीं जाना चाहिए था। जब सामान्य प्रिपरेशन है तो फिर बात ही क्या है। तो अगर ये दुनिया के कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और अगर सच में ये इतनी कठिन परीक्षा है तो प्लीज हेल्प मी और प्लीज गाइड मी से कैसे बात बनेगी, आप बताइए। हाँ, कोई प्रश्न होते हैं उनके मैं जवाब देता हूं, लेकिन गाइड करने की जहां तक बात है, एक संपूर्ण रूप में गाइड करने की बात, दोस्तों वो एक बहुत ही कठिन काम है और ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन किया जा रहा है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हाँ, मेरा जो डेली ऑडियो लेक्चर है उसके एक हिस्से पर आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करता है, और वो है करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर के, और साथ ही साथ एज ए होल जो प्रिपरेशन का एक तरीका होना चाहिए, आपके अंदर जो इसके लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, वह कोशिश मेरी इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से जरूर है। अब जैसे दूसरे भी जितने विषय हैं आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो टोटल सिलेबस है, देखिए मुझे ऐसा लगता है पूरी ईमानदारी के साथ कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आपके पढ़ने की स्टाइल बेसिक समझ से विकसित होती है, तो बाकी विषयों की तैयारी आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन दो विषय ऐसे हैं जिनके बारे में स्वयं तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल काम मुझे मालूम पड़ता है। दोस्तों, ये मेरी अपनी राय है, आप इसे बिल्कुल एज ए ग्रांटेड मत ले लीजिएगा, है ना, मैं अपनी राय बता रहा हूं। उसमें एक विषय है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी की तैयारी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर किताबें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे जानेंगे, वो तभी संभव है जब आपको कोई बताए, तो वहां निर्देशन की जरूरत होती है। और दूसरा है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो इसके अलग अलग भाग हैं। प्री के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखें तो उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के देखें तो उसमें इकोनॉमी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इकोनॉमी को भी समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स जानना जरूरी है। अब जो इकोनॉमिक्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी बिना निर्देशन के समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का, अगर वो इन दोनों सब्जेक्ट के बैकग्राउंड का नहीं है, तो अपने आप किताबों से समझ जाएगा, मुझे थोड़ा सा संदेह लगता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इधर उधर से जानने की कोशिश करता है, एक एक टॉपिक को लेकर के खूब माथापच्ची करता है, तो भले ही उसके अंदर वो बात पैदा हो जाए, मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर वह इन दो विषयों में खासकर वह निर्देशन हासिल कर सकता है तो मुझे लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। इससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा, उसका वक्त भी थोड़ा सा बच सकेगा, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे विषयों की तैयारी में कर सकेगा। लेकिन ये जो दो विषय हैं ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, और इसके लिए मित्रों व्यावहारिक दृष्टि से आपको किसी न किसी तरह के निर्देशन की व्यवस्था अपने लिए करनी ही चाहिए, तभी इसकी सही तरीके से तैयारी हो सकेगी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: विक्रम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर संजय कुमार, अब्दुल कादिर, दीपक कुमार गेनाडी बिहार से, नलिनाक्ष शंकरम पूर्णिया बिहार से, प्रभात सुमन, डॉक्टर शशांक, सुधांशु मिश्रा दरभंगा बिहार से, श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से, हिमांशु अग्रवाल, रश्मि उन्नाव उत्तर प्रदेश से, गौरव मेघवाल और पायल खत्री उदयपुर राजस्थान से। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।